الله سبحانه وتعالى فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والوں کو ایمان کی نسبت سے پکارا گیا. مالی معاملہ ہے اور ایمان کے ساتھ پکارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا اثر بندے کے مالی معاملات پہ یقیناً پڑنا چاہیے. دیکھیے، ایمان نہیں ہے نا جو مرضی کرو، جس کا کھا لو، جس کو کھلا دو، جدھر مرضی اپنی بات کر لو، دس اینڈ دیٹ. لیکن جب تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر کیا کرو، کچھ پابندیاں، کچھ رولز ہیں، کچھ گائیڈ لائنز ہیں، ان کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. اب جب ایمان والے توجہ کرنے لگ گئے اور ان کو لگا کہ واقعی بھائی مجھے یہ بہت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی بات سننے کی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذا تداینتم، جب تم آپس میں معاملہ کرو، کس طرح بھی، دینن دین کے ساتھ، قرض کے ساتھ معاملہ کرو، تو کیا کرو؟ نمبر ایک، اب نمبر ایک ڈالیں گے آپ آیت کے اوپر، الا اجل مسمہ. یہ ہے پہلی شرط. جب کسی کو قرض دے یا لے رہے ہو تو نمبر ایک کرو کہ مدت کا تعین کرو، کب واپس ملے گا. یہ پہلی شرط ہے کسی کو قرض دینے کی، کہ تم یہ بتاؤ کب دو گے. ایک مہینے میں واپسی ہوگی، دو میں ہوگی، انسٹالمنٹس میں ہوگی، پوری ہوگی، آدھی ہوگی، واٹ سو ایور جو بھی ہے. اور دوسری شرط فاکتبوہ، اس پہ نمبر ٹو لگا لیجئے، اور اس معاملے کو لکھ لو، ڈاکیومنٹیشن کر لو، انگوٹھا لگا لو، پین سے لکھ لو، کاپی پہ لکھ لو، ٹائپ کر لو، جو مرضی کرو، لیکن یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ تمہارے پاس ہونی چاہیے کہ اس کو تم لکھ لو. ول یکتب بینکم کاتبم بالعدل، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا لکھے عدل کے ساتھ. یہ تیسری چیز ہے سائڈ پوائنٹ پہ، اس کے اندر لکھ لیجئے گا کہ تمہارے درمیان اس معاملے کو کسی تھرڈ پرسن کو، جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو، وہ لکھے. ٹھیک ہے؟ پھر اس لکھنے والے کو کچھ مینر سکھائے گے کہ ولا یا بکاتبن، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، این یک توبہ، کہ وہ لکھے. جس طور میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں وہاں لکھے پڑھے لوگ بہت تھوڑے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو کہا کہ جب کبھی کسی کو کوئی بلائے کہ آؤ تم یہ ہمارا معاملہ لکھ دو، تو پھر جس کو اللہ نے لکھنا پڑھنا سکھا دیا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آئے اور لکھے، انصاف سے بھی لکھے اور انکار نہ کرے. کیوں نہ انکار کرے؟ کیونکہ کما علمہ اللہ، کیونکہ اللہ نے اس کو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بخشی ہے، لہٰذا فل یکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سکل ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو لکھنے کی سکل دی ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں لگائیے، بولنے کی دی ہے تو اللہ کے راستے میں، پڑھنے کی دی ہے تو پڑھنے کا، یعنی جو بھی کر سکتے ہو. گویا کہ یہاں بتا دیا کہ نخرے نہ کرو. آج کے دور میں تو یہ ایک باقاعدہ پروفیشن بن چکا ہے، جس کو عرضی نویس کہتے ہیں، یا بیچ میں ایسے کلرک ٹائپ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ڈاکیومنٹیشن کر دیتے ہیں اور اس پہ تھوڑے بہت پیسے لے لیتے ہیں. لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو جو بندہ والنٹیئرلی کسی دوسرے کی مدد کرنا چاہے تو وہ کر لے، اور اس کو عدل کے ساتھ کرنا ہے. اب یہاں تک بات کر کے آگے چلیے. ول یوم للذی علیہ الحق، اب امیجنیشن میں لائے اے اور بی. آپ سمجھیے کہ ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، دونوں کا معاملہ، ایک لے رہا ہے، دوسرا دے رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلی شرط بتاؤ کب واپس کرو گے، دوسری صورت یہ کس کو لکھو. ٹھیک ہے، یہ لکھنے کا جو حکم ہے نا، یہ فرض نہیں ہے استحباب کے درجے پہ، یعنی اٹس ویری ویری ریکمینڈیڈ، اٹس ناٹ فرض، لیکن اتنا پسندیدہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، تیسری بات یہ کہ کوئی اور لکھوے، یعنی لینے اور دینے والا نہ لکھے بلکہ ایک تھرڈ پرسن لکھے. ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے، تو بیچ میں کوئی اور بیٹھ جائے، ماموں بیٹھ جائے، خالہ بیٹھ جائے، پھوپھی بیٹھ جائے، کوئی غیر بیٹھ جائے، وہ بیٹھے. اگلی شرط کیا ہے؟ کہ جس کو بلایا جاتا ہے کہ وہ لکھو، وہ عدل سے لکھے. یہ نہیں کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے تو وہ بھائی کی سائڈ لیتے ہوئے کہہ دے نہیں اس نے 1.5 لاکھ دیا، یا بہن کی سائڈ لیتے ہوئے کہ نہیں 50,000 دیا. یہ نہ کرے، یعنی لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے گا. پھر اگلی شرط کیا ہے؟ کہ جب اس کو اس کام کے کرنے کے لیے بلایا جائے کہ آؤ لکھ دو، تو پھر انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دے دی. اب اس سے آگے اپنے مائنڈ کو لے کے چلیں، بھائی بیٹھا ہے، بہن بیٹھی ہے، بیچ میں ماموں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہو کیا، کون کس کو لکھائے کہ کون دے رہا ہے، کون لے رہا ہے. ول یوم للذی علیہ الحق، और चाहिए कि इमलाक करवाए वो शख्स जिसके ऊपर हक है। भाई दे रहा है, बहन ले रही है, मामू लिख रहे हैं, तो लिखवाएगा कौन? बहन लिखाएगी। भला क्यों? जो ले रहा है वो तो नहीं कहेगा कि ज्यादा है, वो तो दबा हुआ है ना किस्म का। ये हो सकता है कि जो दे रहा है वो दे थोड़ा, लेकिन जबरदस्ती में ज्यादा लिखवा दे, और दूसरा मस्कीन बंदा बोले ना, मुलाजिम ले रहे हैं आपसे, आप दे रही हैं, तो कौन लिखाएगा? मुलाजिम लिखाएगा कि बेगम साहिबा ने मुझे 2,000 रुपये एडवांस दिया और मैं अगले 2 महीने की तनख्वाह से कटवा दूंगा। ठीक है, तो अगली शर्त क्या है इसमें? आप 1, 2, 3 डाल रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह इसको समझेंगे कि इस डॉक्यूमेंटेशन को बोलेगा कौन वर्बली जो कर्ज ले रहा है। ठीक है, और साथ ही कह दिया बल यत्तकिल्लाह रब्बहू, और चाहिए कि अपने रब से डरता रहे, क्योंकि बाज दफा मजलूम भी बड़ा जालिम बन जाता है। लेने वाले ले भी लेते हैं और घूरते हैं कि हमें कोई नहीं मिला, तो कहा देखो अल्लाह से डरा करो। वला यबखस मिन हुशैया, इसमें कोई भी कमी बेशी ना करो। अब ये बल यत्तकिल्लाह रब्बहू किसको कहा गया? जो इमला लिखवा रहा है, और जो लिख रहा है उसको भी कहा जा रहा है। वला यबखस मिन्हु शैया, इस मामले में कुछ भी छोटी बड़ी बात छोड़ ना देना, ऐसा ना करना, वो ना करना, यानी इच्छी बिची लिखना जिसको अपनी जुबान में कहते हैं। बड़े बड़े मामले तो आराम से लिखे जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन छोटी छोटी बातें नहीं लिखी जाती, उसका जिक्र आगे आएगा। अब सवाल पैदा होता है कि लेने वाला लिखवाएगा, इतनी बात हो गई ना, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है क्या? फाइन का नल्लज़ी अलैहिल हक्कु सफीहन, नंबर एक, जो कर्ज ले रहा है हो सकता है कि वो कम अकल हो, ठीक है, सफीहन जोफ है, जहनी तौर पर रिटार्टेड है, कुछ भी है, औ दईफन, या कमज़ोर है, बीमार है किसी भी तरह से, औ ला यस्तुति युमिल्ला, कि वो इमला करवा ही नहीं सकता, मसलन गूंगा है, बोल ही नहीं सकता कि मैं कर्ज ले रहा हूँ। दूसरी एक सूरत होती है, इतनी दूर है कि आ ही ना सके उस वक़्त, ओवरसीज का मामला चल रहा है, जाहिल है, उसको लिखत पढ़त नहीं आती, ठीक है, ये भी तो मुमकिन है ना। फिर कौन कराए? अब आपके दिल में आएगा कि फिर वो लिखवा दे जो ले रहा है, नहीं जो दे रहा है, फिर भी वो नहीं लिखाएगा। फरमाया युमिल हुआ फल युमलिल वली युहु बिल अदल, फिर उसकी जगह उसका कोई सरपरस्त लिखाए, कोई वकील, ये यहाँ जो वली जो है ना, इसको नीचे वकील कह दें। एक होते हैं लॉयर्स या वकील, जो अदालतों में एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से पढ़ने के बाद आते हैं, लेकिन यहाँ आप घरेलू काम है तो आप किसी वकील को नहीं बीच में लेके आएंगे कि भाई बहन का मामला है तो इसमें लिखत पढ़त करनी है, कोई तीसरे बंदे को वकील बना लो। मतलब इसमें क्या है कि लिखवाएगा वही जो ले रहा है, देने वाला नहीं होगा। यहाँ रोक के जरा हल्की सी बात कर लूँ साथ ही, आज के दौर में जो बैंक से मामला चलते हैं, ठीक है, लोग कर्जे लेते हैं, मॉर्गेज लेते हैं, घरों के कर्जे, गाड़ियों के कर्जे, पेपर्स किसकी तरफ से आते हैं? हमें बैंक की तरफ से आते हैं, और आंखें बंद करके 50 सफ़ों पे आपसे साइन करा लेते हैं, इस पे साइन, उस पे साइन, उस पे साइन, कौन करवा रहा है? अल्लाह कहता है तुम कर्जा ले रहे हो ना, तुम लिख के बैंक को दो, और बैंक कहता है कि मैं दूंगा। यानी आप देखेंगे बिल्कुल आज के दौर में अपसाइड डाउन है, जिस तरह हम मामलात में गड़बड़ में है, इंसानी में, आप देखिए हर तरफ ही तो गाड़ी उल्टी हुई है। शौहर बीवी की तमीज़ फर्क गई, तलाक का मामला बिगड़ गया, शादी के रिश्ते बदल गए, वहां आप देखें तो माली मामला इस वक्त अगर आप गौर से देखें ना, तो वही बंदा बचा हुआ है कि जिसके बारे में हदीस में आता है कि एक दौर आएगा इतने फितने होंगे, हर तरफ सूद है, हर तरफ ये, कि जो बंदा अपनी बकरियां लेके जंगल में चला जाएगा ना, वही अपना ईमान बचाएगा। आज सच्ची बात है, वही लोग हैं वो कहते हैं हम माली मामलों में नहीं पड़ते, बड़े खुशकिस्मत हैं वो, हम उनको मस्कीन समझे, हम उनको नासमझ समझे, लेकिन वो बहुत सारी कबाखतों से बच जाते हैं, और जो पूरे पाँव फैला के जीना चाहते हैं फिर बहुत कुछ अंदर जाता है। तो यहाँ देखिए कि डॉक्यूमेंटेशन बैंक नहीं करेगा, आप उसको करके देंगे अगर इस कानून को देखा जाए, क्योंकि आप ले रहे हैं, आप शर्तें जो मान रहे हैं वो सोच से लिखेंगे। अब जब ऐसे ऑफिस में बैठ के कर्जे लिए दिए जाते हैं, लेने वाले को तो पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या, किसी को सच्ची बात है इतना नहीं पता होता कि हमारी किस्त कितनी है, हम टोटल कितना देते हैं। ये बात हुई है तो बात से बात निकलती जा रही है कि बाज़ दफ़ा सिस्टर्स हैं, एक सिस्टर थी तो घर लिए, कितने का लिए, कहने लगी कि हमने वो घर 6 लाख का लिया है, 6 लाख क्रोन की बात थी ये जो मुझे याद है। तो मैं ऐसे इंटरेस्ट लेती रही, मेरे हाथ में ये फ़ोन भी था उस वक्त, मैंने कहा अच्छा फिर क्या वक्त ही, बस बड़ा अच्छा मिल गया, 6 का लिया, फिर क्या, कोई बात नहीं, पैसे 20 साल में देने हैं, अच्छा जी 20 साल में देने हैं, ठीक है। दूसरी बात मैंने लिख ली, 20 साल पहले कितना दिया, उन्होंने बता दिया कि इतने, पता नहीं कितने दिए होंगे, कोई इसके 10%, कोई 60-70 हज़ार क्रोन दिया हुआ था, हो गया ख़त्म, मैंने कहा अब आगे क्या, कहते बस महीने में किस्तें देनी पड़ेंगी। मैंने कहा कितनी है, उन्होंने वो बोलती कि मैं लिखती गई ऐसे ही जैसे वो खेलता नहीं बंदा एंजॉय करता है। अच्छा जी पहले आपने इतना दे दिया, 20 साल है, 20 साल में हर साल में 12 महीने, 12 महीनों में हर महीने में आपने इतने हजार देना। जब मैंने पूरा फिगर करके फोन उनको दिखाया ना, तो आप बिलीव करें, आप मेरी बात छोड़ें, बाद में आप खुद भी करके देखें, तकरीबन 11 से 12 लाख करोन का वो घर बना। मैंने कहा ये देंगी आप उनको 20 साल के बाद? हाय मैं मर गई। मैंने कहा ये आप नहीं मरी, हुआ ये है घर उन्होंने आपको 6 लाख का दिया है, ये किस सूरत में था? ये 6 लाख का घर दें या आप उनको 6 लाख हाथ में पकड़ा के घर आ जाएं? कहते वो यही है घर 6 लाख का लिया है, आज दिया कल पैसे दें 6 लाख के, नो प्रॉब्लम। हमने अपना स्कूल लिया अल्लाह के हुक्म से, कैश टू कैश, एक पैनी नहीं हमने उनको पीछे छोड़ी। वो खुद हैरान थे, हमने कहा नहीं हम खुद कर्जे देंगे आपसे नहीं लेंगे, खत्म हो गई बात। लेकिन वो 6 लाख पे, ये जो 20 साल में उन्होंने आपको किस्तें दी है ना, वो 6 लाख उन्होंने आपसे कमा लिया। ये है धोखा, आप बिलीव करें। कहती नहीं चलो घर तो अपना, पहले कह रही थी जब ये फिगर सुने तो फिर वो भागी गई कि ये हमने क्या किया। तो मर्दों को पहले ही पता होता है, औरतों को पता नहीं होता। तो मैंने कहा आज से लोगों को ये ना कहिएगा कि ये 6 लाख का लिया है, लोगों को बताएं मैंने 12 लाख का घर लिया है। लोग कितना बेवकूफ बनते हैं। मैं कहती हूँ जितनी बेवकूफी आज हम मुसलमानों को अगर ये बातें समझ आ जाएं, तो कम से कम अपने पाँव पे तो कुल्हाड़ी ना मारे। लोग क्या कहते हैं चलो जी बच्चों के लिए कुछ बन जाएगा, खुद नस्लें से कर्जे में गई, बच्चे बाद में कर्जे पे गए, मर गए तो खुद भी गुनाहगार, जनाजा तक नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो पढ़ते। और उसके बाद आप देखिए कि वो घर जब आपको तब मिलना है ना, उस वक्त तक उसकी वैल्यू इतनी नहीं हुई होनी जितने का आपको पड़ा। लोग कहते हैं नहीं किराया भी तो देते हैं, तो किराए की जगह किस्त दे देंगे? बैठ के इस पे बात कर रहे हैं, मेरा दिमाग मैथमेटिक्स में बहुत चलता है अल्लाह के हुक्म से। बैठे बैठे मैं आपको बता सकती हूँ, आप जब विरासत पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि यहाँ बैठ के न्यूमेरिकल भी करेंगे। इतना बेवकूफ लोग बन रहे हैं इतना, लेकिन वो सिर्फ ये कहते हैं देखेंगे, वो फिर क्या जिसने देखना देंगे। इंतहाई नासमझी की बात है कि एक बंदा अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारे। कैन यू बिलीव, मुझे एक और सिस्टर की कहानी, जो जाहिर है कि लोग बात करते हैं तो फिर मशवरा दिया जाता है उनको, कि घर अपने मौजूद है, 4 घर हैं, पांचवा लेना है, मिसाल ले लें 3 थे तो चौथा लेना होगा, नो प्रॉब्लम। घर मौजूद है, अभी उनके पे ऑफ नहीं किए हुए, फिर एक घर ले रहे हैं और वो भी ये लोन पे ले रहे हैं। मैंने कहा ये क्यों कर रहे हैं आपके? कहती बस वो कहते हैं कि इतने घर अपने बनेंगे। तो मैंने कहा लकी बंदी, आप कह रही हैं कि उनके 4 घर पहले से ही जो उनको किस्तें देनी है, अब 5वें घर की तैयारियों में है, क्यों भाई? चलो जी बाद में 5 बच्चों के 5 घर बनेंगे। तो मैंने कहा वो ये क्यों नहीं करते कि लेट्स स्टॉप इट हियर, 4 घर 5 मौजूद है ना, जिस पैसे से 5वां घर ले रहे हैं उसमें से पहले एक घर पे ऑफ कर दें, इनको खुद फायदा होगा। कहती नहीं, वो कहते हैं नहीं इस तरह चलो किस्तें देते रहेंगे घर बनते जाएंगे, वही 6 और 12 वाला मामला करके खुद 5 घर आप 10 साल में बनाएंगे। तो आप एक घर के पैसे जमा कर लें, एक ले लें, फिर दूसरे के जमा कर लें तो दूसरा ले लें। यानी इस वक्त हमें यूं उल्लू बनाया जा रहा है, जिनका तो आखिरत पे एतबार नहीं, जिनको मरना जीना कर्ज वैसे, वो कहते हैं ऐश करो, मौज करो, मस्ती करो, जिस्म पे कपड़े भी उधार के हैं, वो जाके क्रेडिट कार्ड्स पे कपड़े पहन के शो मार के आ जाते हैं, उनको क्या लगे? उनकी तो बात ही नहीं, बात तो उम्मत मुस्लिमा की है। इतने तल्ख, इतने बिटर ट्रुथ हैं ये आज के, और मेरी आवाज ना चाहते हुए भी इन मौजूआत पे सख्त हो जाती है। यकीन करें ऐसे मुझे दुख होता है, मैं कहती हूँ कि ना दूसरों की फिक्र करो अपनी तो करो। अल्लामा इकबाल का गालिबन शेर है या मिर्ज़ा गालिब का, कि तू मेरा नहीं बनता ना बन, अल्लाह ताला कहता है तुझे मेरी परवाह नहीं है ना ना बन, ना बन तू के इन्नी लिल्ला और इन्ना लिल्ला, लेकिन अपना तो बन। आज का मुसलमान भी इतना बेवकूफ बना इन बातों में आके, और जमा तफरीक नहीं करते, वजह सिर्फ यह कि सब्र नहीं है, ख्वाहिशों का सब्र नहीं है। अल्लाह नहीं मना करता आपको अपना घर बनाने से, अल्लाह खुश होता है हदीस में कि अपना घर, खुला घर, हवादार घर नेमत है इंसान को, जो अल्लाह की तरफ से इस दुनिया में नेमतें मिली हैं उसमें बहुत बड़ी नेमत है अपना घर। लेकिन अपना घर, गैर के घर के नाम पे आप अपनी तख्ती लगा सकते हैं? सच बताएं मुझे, एक लम्हे के लिए बताएं, किसी के घर के बाहर जाके आप अपने नाम की तख्ती लगाएं, पुलिस आ जाएगी आपके घर। जिसका घर होता है उसी का घर होता है, और उनको अल्लाह मुबारक करे। बात वाजे है ना? हम जो आज के दौर में करते हैं कि थोड़ा सा पैसा देकर अपने नाम की तख्तियां लगा लेते हैं, फिर नस्लों को कर्जों में छोड़ जाते हैं, और बैंक कहते हैं कि हम लिखेंगे तुम ना लिखो, और जब आपका कोई मामला डील बिगड़ती वो कहते हैं देखो आप खुद साइन करके गए। यकीन करें, तो इसलिए अल्लाह सुबहान तआला की इस बात को गौर से सुनने की और संजीदगी से लेने की जरूरत है कि उस मामले को वो लिखाएगा जो कि पैसा ले रहा है। खुद नहीं कर सकता तो फिर उसका कोई वली होगा, यानी वली से मुराद जहां उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा कोई भी है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव अगर इतना होशियार है तो वो इतना ना बन जाए कि उसमें गलती करे। बाद दफा जो पैसा ले रहा है वो तो सीधा साधा था, वो तो सच बोलेगा, लेकिन बीच में किसी थर्ड पर्सन को डाला तो कहा वो भी बिल अदल, अदल के साथ बात करे। हर जगह आप देख सकते हैं कि जो शर्त है वो अदल की है, ले रहे हो दे रहे हो सकता है इंसान इंसानों के साथ जीता है, कभी लेता है कभी देता है, जरूरत पड़ जाती है बीच में, लेकिन देखो कि किसी पे जुल्म नहीं करना, किसी पे ज्यादती नहीं करनी। याद रखिए कयामत के दिन लोग सबसे ज्यादा जिस चीज पे पकड़े हुए होंगे ना वो इंसानी मामला था। ये बात आज यहीं कान खोल के सुन ले, मैं भी और आप भी, और अगर मेरा आपके साथ किसी का कोई मामला है तो मुझे तो यहीं या तो मेरे से हक ले लें या मुझे माफ कर दें, वरना अगर किसी बंदे का हक लेके हम दुनिया से चले गए, हदीस में आता है कि कयामत के दिन एक बंदा जिसके मामले चुकाए जा चुके हैं, नेकियों का ढेर उसके पास पड़ा हुआ है, खुश हो रहा होगा देख के कि कितनी नेकियां मेरे पास, लोग भी देख रहे होंगे कि वह बड़ी नमाजें तहज्जुदें रोजे कुर्बानियां हज, बड़े चर्चे थे इनकी बातों के, लेकिन कयाती रजुलन एक बंदा उसके पास आएगा जिसका उसने कहीं हक मारा, किसी की गीबत की है, अब वो आके कहेगा अल्लाह इसे मेरा हक दे, इसने मेरा हक देना था। वो हक माली भी हो सकता है, वो इज्जत का हक भी हो सकता है, हमारी तो जुबान नहीं इतना कुछ बोल देती है लोगों को कि चर्ब जुबानी से हम सच्चे होके आ जाते हैं। अब वो जब हक मांगेगा तो वहां कुछ है नहीं। अब कयामत के दिन की करेंसी का नाम डीड्स है, लिख लें ये भी बड़ा बड़ा। जैसे दुनिया के कुछ मुल्कों में डॉलर चलता है, कहीं पाउंड चलता है, कहीं रुपीस चलते हैं, इसी तरह से कयामत के दिन कुछ लेना है या देना है इसके लिए डीड्स चलेंगे, आमाल चलेंगे। फमैयामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमैयामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अमलों की पैनियां भी वहां दिखेंगी, चेंज भी दिखेगा। अब वो शख्स जब उससे हक मांगेगा तो हक तो है कोई नहीं, तो कह देगा अच्छा ये देखो इसकी नमाजों का ढेर लगा हुआ, इसमें से कुछ ले लो, उसको और क्या चाहिए। देखिए ना, कोई अमेरिका में खड़ा है और उसका किसी ने पैसों में रुपयों में कुछ देना था और अब वो अमेरिका में आ गया, कहता है मुझे दे दो, वो कहता है देखो इधर मेरे पास रुपये तो कोई नहीं है, डॉलर लेते हो, तो वो क्या करेगा, बगले झाड़ेगा ना कि हाँ हाँ डॉलर ही दे दो, मैंने रुपये इधर लेके क्या करने, वो रुपये तो मेरे किसी काम नहीं आएंगे। बिल्कुल कयामत के दिन जब अगले को पता चलेगा कि ये तो अपने अच्छे अमल देने वाला है, तो हदीस में आता है कि वो खुशी खुशी उसकी एक नमाज लेके चला गया, फिर दूसरा आ जाएगा, वो तीसरा आएगा, हत्ता कि उसकी नेकियां उसकी इबादत उसकी तहज्जुदें उसके माल सब बट जाएंगे। लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं, अब कहा जाएगा किसकी तो सारी चीजें खत्म। तो फिर कहा जाएगा अच्छा तुम ऐसा करो, तुम आए हो ना, तुम अपना कोई गुनाह इस पर डाल दो, जहाँ नेकियों का ढेर। तब अल्लाह ही हदीस, हदीस मुफलिस के नाम पे आती है, आपने अपने सहाबा से पूछा था तुम्हें पता कि मुफलिस कौन है, यानी मुफलिस हैंड टू माउथ, गरीब पुअर नीडी जो भी नाम ले लें दुनिया में जो हम बोलते हैं, तो लोगों ने कहा जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो, तो आपने फरमाया कि नहीं, इन्ना मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो नमाज रोजे हज के साथ आएगा, लेकिन लोगों के मामलात की वजह से सारी इबादत उधर फट जाएंगी और आखिर में लोगों के गुनाह उसके ऊपर पड़ेंगे, फतूरिहत इलन्नार, फिर उसको धकेल दिया जाएगा आग में, तो लमलात है जन्ना मिन्हुम। ये पुल सरात है, याद रखिए ये पुल सरात है। अल्लाह जितने इंसानों के बीच में आपको रखे, खुशियां तो बड़ी होती हैं लेकिन मामले बड़े सख्त हैं। इतना खौफ होना चाहिए हमें लोगों के मामलात में कोई हेरा फेरी करते हुए। अल्लाह माफ कर देता है, अल्लाह बहुत वसी है, अल्लाह बंदे की बड़ी से बड़ी बर्दाश्त करता है। यहां हम में से कितने हैं जो फजर पढ़ के नहीं आए होंगे, अल्लाह ने हमारे मुंह पे नहीं रखा हुआ कि तुम नहीं पढ़ के आए। हम में से कितने हैं जो आने से पहले झूठ बोल के आए होंगे, अल्लाह ने नहीं हमारे मुंह पे लिखा हुआ, हम फिर इज्जतदार बन के बैठे हुए इधर एक दूसरे की नजरों में। लेकिन याद रखिए कि बंदों के साथ बंदों के मामले जब तक नहीं बख्शे जाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। एक और डराने वाला आपको अमल बता देती हूँ, उसके बाद तो हाथ ही ठंडे होने लगते हैं। जन्नत और जहन्नम का फैसला मैदाने महशर में हो रहा है, नेकियां बदियां तुल गई। पुल सरात जो है ये जहन्नम के ऊपर है, यानी ये जहन्नम, ये पुल सरात, तो ये जन्नत, वन वे है। मैदाने महशर से जिसको जहन्नम में आना है वो तो सीधा इधर आएगा और धकेल दिया गया, जिसको जन्नत में भी जाना है ना वो उसको भी वही मिनको मिल्ला वारी दुहा, तुम में से कोई ऐसा नहीं जो जहन्नम के ऊपर से ना गुजरे, और इस जहन्नम के ऊपर पुल सराता। अब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि एक शख्स मैदान मख्शर में अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ तुलवा रहा है ना, तुलवा चुका, पता चल गया कि ये जन्नती है कि जहन्नमी है, और उसके बाद वो पुल सरात के रास्ते जन्नत की तरफ भेजा जा रहा है। सारे मामले हो गए, और आप दूसरे लफ्ज़ों में मुख्तात बात कहूँगी, गैब का मामला, लेकिन जो हदीसों से इशारे मिलते हैं, मैं आपको उसका खुलासा अपने लफ्ज़ों में इस वक्त बता रही हूँ कि जब वहाँ से निकला, चलो सुरखरू हो गया, जान बची सो लाखों पाया, बिल्कुल ऐसे है कि एयरपोर्ट पे आपको बोर्डिंग पास मिल गया, सामान आपका अंदर चला गया, हैंड कैरी मौजूद है, चल पड़ते, हम कहते हैं भाई जाओ जाओ खुदा हाफिज, हम जा रहे हैं, बोर्डिंग पास मिल गया। अब वहाँ से वो जो हाथ का कैरी ऑन लेके चल रहा था ना, ये सिक्योरिटी जोन में कई दफ़ा वहाँ फंस जाते हैं, ये पानी की बोतल क्यों है, ये आप ले, वो कहते हैं अंदर से खरीदो बाहर से क्यों लाते हो, हाँ कभी इतनी इतनी छोटी बातों में कोई चीज़ निकल आती है, वो कहते हैं जाओ वापस करो, तुम नहीं जा सकते, फंस जाता है ना बंदा, कम अज़ कम मीमाख तो बहुत होती है ना। ये जो पुल सरात है ना, हदीस में आता है कि जब जन्नत वाले पुल सरात के ऊपर से गुजरेंगे ना, तो पुल सरात का आखिरी सिरा बिल्कुल जन्नत के करीब, वहां रोक लिए जाएंगे। वहां एक मुकाम है जिसका नाम है कंतरा, काफ नून तोए रौ हा, कंतरा। यहां कुछ लोग रोक लिए जाएंगे, और ये वो जगह जहां हकूकुल इबाद के मामले निपटेंगे। अल्लाह हमें ना पकड़े, बहुत डर के रहें, अपने रिश्तेदारों से माफिया मांग के रहें, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, शौहर से, बीवी से, ये बड़ी बड़ी बातें करके हम मौलवी और हम दर्स वाले तो बन जाते हैं, लेकिन याद रखिए अगर करीब वालों के साथ हमारा मामला खराब है, नौकरों के साथ, बहुओं के साथ, बेटियों के साथ, और ससुराल के साथ, और जो हमारी इर्द गिर्द चीज़ें हैं, तो समझिए कि ये हमारी पुल सरात है, वहाँ जाके वो पहले हक मांगेंगे, अगर वो माफ़ करेंगे तो आप जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। तो इसके मामले में शदीद इंसान को मुहासबा चाहिए। कोई रात आपकी ज़िंदगी की ऐसी ना हो जब आप लोगों से माफ़ी मांग कर या उनसे दिल साफ करके सोएं। किसी को नहीं पता कि आज के बिस्तर से उठना है कि नहीं उठना, दिल में ग्रज पाल पाल के मरते हैं। यकीन करें, सगी माँ बेटियाँ बाज दफ़ा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखती, सगे भाई बहन साल हर साल नहीं मिलते, और फिर मिलते किस दिन है जब दोनों में से एक का वक्त आ जाता है, फिर रोते हुए आते हैं, हाय मेरा भाई इतने साल से नहीं मिली, हाय मेरी बहन इतने साल से जुदा थी, एक रिश्ता हो के टूट जाए हमारी जान पे बन जाती, हम कहते हैं शक्ल नहीं देखेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं अदल की बातें किया करो। इसलिए आप अगर कुरान पढ़ रहे हैं ना, ख़ानदान आपका भी कुरान नहीं पढ़ रहा, आपके मामलों से देखें कि आप कितने फेयर हैं, माफ़ी मांगे सबसे, दिल से उनको माफ़ करें। हर बंदा ये सोचता नहीं मैं तो सबसे बड़ी अच्छी हूँ, फलां मेरे सब बुरे हैं, झूठ है ये। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा क्राइटेरियन बता दूँ रिश्ते नातों का, आप पूछें आपको किससे गिले हैं। भाभियों से मुझे गिले हैं, अगर आपको है ना तो लिख के रख लीजिए कि उनको आपसे इससे ज्यादा है। आपको अपनी मोमानियों से गिले, चच्ची से गिले, फुफ्फो से गिले, जिस जिस से आपको कोई गिला है ना, तो लिख लें उसको 10 टाइम ज्यादा कर लें, तो उसको आपसे भी इतने ही गिले हैं। जहां आप अकड़ रहे होते हैं ना, फूं फां कर रहे होते हैं कि मेरा हक नहीं दिया, मुझे पूछा नहीं, मैं गई तो ये हुआ नहीं, आई तो हुआ नहीं, आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं, तो मान लीजिए कि अदर पार्टी भी ऐसी है, क्योंकि तस्वीर का दूसरा रुख है। और अगर आप अपने आप से पूछें कैसा है मेरा खानदान, माशाल्लाह, फुफ्फो कैसी है, बड़ी प्यारी, बहन कैसी है, उस जैसी तो कोई है नहीं, भाभियाँ वो तो चांद के टुकड़े, नंदे कैसी हैं, बहुएं कैसे हैं, जिस दिन आपका दिल ये कहेगा ना कि वो बहुत अच्छे हैं, तो आप यहाँ बैठे कोई गैर उनसे पूछ ले आपके बारे में, वो आपके गुनगाएंगे। ये किस तरह का चेन रिएक्शन है, जिस सीने में कुरान आना होता है ना, उस सीने में ये ग्रजिस नहीं रहते, और ये होता पता कब है, जब अपनी ज़ात के खौल से निकलते हैं। हम बहुत खुद पसंद होते हैं, वल्लाही बज़ाहर मस्कीन दिखने वाले लोग, हर वक्त पीस पीस के नारे लगाने वाले लोग भी अंदर से बहुत ज़्यादा मिसचीफर होते हैं, और बहुत ज़्यादा तकबर वाले होते हैं। आप अपने अंदर से अकड़ ख़त्म करें, बंदगी लाएं, आज मैं हूँ क्या, पूछ लिए भाई ने, इतना ही बड़ा कौन पूछते हैं आज के दौर में, सारे शहर में नजर जाती भी तो भाई पे ही है ना, फिर क्या, भाई ने पूछ लिया, चलो नहीं गाड़ी भेजी, टैक्सी भेज दी, चलो कुछ नहीं हो सका, आई थी घर में, नहीं सारा दिन लगा सका, चलो काम से जल्दी आ गया, उसने मेरे से बैठ के खाना ही खा लिया। हम जब चीज़ों को अपना हक समझ लेते हैं ना तो हम लोगों पे जुल्म करते हैं। इसलिए ये माली मामलात तो कभी कभी बढ़ते हैं, इज्जत के मामले और लेन देन के तो बहुत बढ़ते हैं।